ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने आज छत्तीसगढ़ की 2 सीटों सहित 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की। राज्य विधानसभा में आज मुख्य रूप से जेल में हुई मौतों और धान खरीदी के मुद्दे गूंजे। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। और रायगढ़ जिले में एक मालवाहक वाहन के पलटने से 4 लोगों की मौत, 25 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज छत्तीसगढ़ की 2 सीटों सहित 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन आज से 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान अगले महीने की 16 तारीख को होगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के 4थे दिन आज सदन में प्रदेश की केंद्रीय और जिला जेलों में बीते एक साल के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में हुई बंदियों की मौत का मामला गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रश्नकाल में ये मामला उठाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 66 बंदियों की न्यायिक अभिरक्षा में मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 66 में से 18 प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 48 मामलों में जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत को हत्या करार देते हुए मामले की जांच विधानसभा की समिति से कराने की मांग की। उन्होंने जेल में जीवन ठाकुर को पर्याप्त उपचार न दिए जाने का आरोप लगाया। इस पर गृहमंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि जेल अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार वे शुगर के मरीज होने के बावजूद आवश्यक परहेज नहीं करते थे। गृहमंत्री ने कहा कि जब किसी मामले में पहले से मजिस्ट्रेट जांच चल रही हो तो समानांतर जांच का औचित्य नहीं है। गृहमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं विधानसभा के शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस संबंध में सरकार की नीति को नाकाम बताते हुए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि धान खरीदी के मामले में सरकार की नीति असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा गया और किसानों को टोकन के नाम पर परेशान किया गया। वहीं कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की मंशा धान और किसान पर चर्चा नहीं कराने की है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की। सभापति ने विपक्ष के स्थगन को अग्राह्य कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। विधानसभा के नियमानुसार गर्भगृह पहुंचने वाले सभी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए। वहीं सदन में आज भाजपा विधायक सुनील सोनी ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से स्कूलों, धार्मिक मार्गों और व्यस्त सड़कों के पास शराब के दुकानों और आहातों के आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य सरकार से घनी आबादी वाले इलाकों में चल रही शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने की मांग की। जवाब में आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शराब की दुकानें और आहाते आबकारी नियमों के अनुसार चलाए जा रहे हैं। सदन में आज विभिन्न विभागों के बजट अनुमानों पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरूआत कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने की। विधानसभा में आज माओवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास का मामला भी गूंजा। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने गृहमंत्री विजय शर्मा से सवाल किया कि नक्सल पुनर्वास नीति क्या है, वर्ष 2023 से लेकर अब तक कितने माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और इनामी माओवादियों में से किसे कितनी राशि दी गई है। अपने जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 9 फरवरी तक 1496 इनामी माओवादियों सहित कुल 2937 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने बताया कि पुनर्वास नीति के तहत अब तक प्रारंभिक राशि के तौर पर माओवादियों को 5,64,00,000 रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा उन्हें इनाम की 49,34,00,000 रुपए की राशि दिया जाना बाकी है। गृहमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को जो राशि दे रही है उसे वे 3 साल बाद बैंक से निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे इस मंच पर ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले वैश्विक राजनेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4,32,00,000 फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित दो माओवादी मारे गए। घटनास्थल से मारे गए माओवादियों के शवों के अलावा एक एसएलआर राइफल, एक इंसास, 12 बोर की बंदूक और दो हैंड ग्रेनेड सहित अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ जितेंद्र यादव ने बताया कि बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान शुरू किया था।
जांगला थाना अंतर्गत जयपुर डोडम के जंगलों में भैरमपड़ीजा कमेटी के माओवादियों की सूचना मिली थी, जिस पर से कल शाम को सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था और अर्ली मॉर्निंग सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें दो माओवादियों के शव बरामद हुए और उसके साथ में इंसास, एसएलआर और 12 बोर जैसे राइफल भी बरामद हुए हैं। जो प्राइमरी शिनाख्त हुई है उसमें एक कैडर मड्डा इचाम और दूसरी कैडर मनकी कोडियाम के रूप में हुई है, दोनों भैरमपड़ीजा कमेटी के सीएम पद पर थे।
वहीं नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में डंप किए गए हथियार के साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि ग्राम कुमुराड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, आधुनिक हथियार तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। इनमें एक रॉकेट लॉन्चर, 13 रॉकेट लॉन्चर सेल, 19 मोर्टार सेल, एक बीजीएल लॉन्चर तथा विस्फोटक सामग्री शामिल है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के तुलार क्षेत्र के जंगलों से सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के दो आईईडी बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना अनुमति स्कूल प्रांगण में प्रवेश करना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाए। इस फैसले के साथ ही उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रांगण में प्रवेश संबंधी लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता विकास तिवारी ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ एक निजी स्कूल में घुसकर दुर्व्यवहार किया था, जिसके खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराई थी। रायगढ़ जिले में एक मालवाहक वाहन के पलटने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 25 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार ये दुर्घटना कल रात कापू खम्हार मार्ग पर उस समय हुई जब सभी लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। वापसी के दौरान तेज रफ्तार मालवाहक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य ने आज रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिलासपुर जिले के बिल्हा में स्थित शाखा में पदस्थ एक कैशियर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 2 करोड़ रुपए की राशि गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्टेट बैंक द्वारा इस संबंध में विभाग स्तर पर भी जांच की गई थी, जिसमें इस गबन तथा आर्थिक अनियमितता के लिए महिला कैशियर और एक अन्य व्यक्ति को दोषी पाया गया था। एसीबी की टीम ने आज इस महिला कैशियर को बैंक से गिरफ्तार कर लिया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा को राज्य नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राजधानी रायपुर के व्यस्त मार्गों जैसे जयस्तंभ चौक, शास्त्री चौक, मालवीय रोड, सदर बाजार रोड, एमजी रोड आदि में अगले 2 महीनों तक सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, शोभा यात्रा, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और कांकेर जिले के अंतागढ़ में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में सांसद भोजराज नाग शामिल हुए। इस अवसर पर श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 2,29,00,000 रूपये की राशि हस्तांतरित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने आज छत्तीसगढ़ की 2 सीटों सहित 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की। राज्य विधानसभा में आज मुख्य रूप से जेल में हुई मौतों और धान खरीदी के मुद्दे गूंजे। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। और रायगढ़ जिले में एक मालवाहक वाहन के पलटने से 4 लोगों की मौत, 25 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।